आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज आपके मुलाकात करवा रही हूँ भारत से आए दो कलाकारों के साथ, जिनका एक शो रहा मेलबर्न एक्मी में एल्सवेयर इन इंडिया। ये ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस थी। आइए क्यों ना उन्हीं से जाने कि ये क्या था।
इसको ऑडियो विजुअल शो बोलते हैं, इसको लाइव सिनेमा परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, इसलिए हम एक्मी के सिनेमा हॉल में इसको बजा रहे हैं। मूर्ति, वो जिनका नाम मूर्तोविच है स्टेज नेम, वो डीजे और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। मेरा नाम तिरुडा है स्टेज नेम, मेरा असली नाम अविनाश है और मैं विजुअल आर्टिस्ट और वीजे हूँ, जिसको विजुअल जॉकी बोलते हैं
जी।
तो हम दोनों साथ में काफी सालों से परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में, एंड पिछले 3-4 साल से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था एल्सवेयर इन इंडिया, जो इंडिया को फ्यूचर में देखता है। यहाँ अब से 40 साल आगे, 40-50 साल आगे इंडिया कैसा होगा, इस इंडिया को हम इमेजिन करते हैं और उसको हम शो के माध्यम से दिखाते हैं लोगों को।
तो भविष्य मूर्तोविक जी आप कैसा देखते हैं?
भविष्य जो है, बाकी जगहों से जब भी भविष्य के बारे में बात किया जाता है तो काफी डार्क और काफी नेगेटिव दिखाया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली मार काट, तोड़म तोड़ी, लड़ाइयाँ, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से दुनिया शायद कभी रुक भी जाए, हम नहीं चाहेंगे, बट हमने देखा है, पैंडेमिक में देखा है काफी चीजें हुए, बट हमने सोचा कि हम अपने हमारी स्टोरी में हम चाहते हैं कि हम अपना इंडियन पर्सपेक्टिव लगाएं, जिसमें हम भविष्य को थोड़ा होपफुल भी दिखाएं, जिसमें हम दिखाएं कि लोग फिर भाईचारे में एक साथ जुटकर अपनी सोसाइटीज को फिर से बिल्ड कर सकें, अपने एक दूसरे के कला को और एक दूसरे की ट्रेड्स को स्ट्रेंथ की तरह, एक कम्युनिटी की तरह काम कर आगे बढ़ सकें।
भविष्य का जो रास्ता है, कल्चर को रीइन्वेंट करने वाली बात हो रही है और यहाँ वो बढ़ रहा है
जी।
और उसमें म्यूजिक का क्या रोल आ रहा है
जी? म्यूजिक है, म्यूजिक ऐसी चीज है जो ना आप खाना पीना, और एज अ म्यूजिशियन मैं समझ सकता हूँ कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक अच्छे मूड में डाल सकती है और आपको एक बुरे मूड से अच्छे मूड में ला सकती है, और म्यूजिक आपका लाइफ का बैकग्राउंड बन जाता है, ऐसी एक विद्या है जो हर किसी को भाती है। तो फ्यूचर में भी हम सोचते हैं कि म्यूजिक का रोल रहेगा, और म्यूजिक लोगों को एक संगत जब कहते हैं तो लोग साथ में बैठते हैं, और एक आदमी को या 4-5 लोग जब अपने कला को पेश कर रहे होते हैं तो लोग सुनते हैं, तो जोड़ने का काम तो सदियों से करती आ रही है और फ्यूचर में भी ये काम जरूर होगा। माध्यम शायद बदल जाएंगे,
तो लोग माध्यम बदल जाएंगे। की बात करें, आपने शुरुआत की मूर्तोविक जी कर्नाटक म्यूजिक से, अविनाश जी यानी थिरुदा जी, नए और पुराने का संगम कितना चैलेंजिंग लगता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है?
इसमें एक चीज बहुत जरूरी है सोचना कि इंडियन कल्चर और हेरिटेज जो है वो हजारों सालों से आता जा रहा है।
हाँ।
और जो नई चीजें आई हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और ये सब, ये माध्यम नए हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि ये शायद जजेंगे नहीं पुराने ढंग के साथ, लेकिन मूर्ति का करियर, मेरा करियर और हमारे जो तीसरी कोलैबोरेटर हैं जयलक्ष्मी ईश्वर, जो भरतनाट्यम डांसर हैं, जो हमारे ग्रुप में तीसरी हैं और उनका जो मेन कैरेक्टर है हमारे शो में दिखाया जाता है, वो भरतनाट्यम डांसर है, पिछले 50 साल से डांस कर रही हैं, लेकिन हम तीनों लोग जब साथ में एल्सवेयर इन इंडिया में काम करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनेक अदर मीडिया आर्ट वाले बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजीज के साथ काम करते हैं, मोशन कैप्चर, वीडियो गेम इंजन, इन सबके साथ काम करते हैं, लेकिन जब हम इनमें काम करते हैं हम ऐसा नहीं सोचते कि ये क्लासिकल है ये मॉडर्न है, हम एक ही रूप में और एक ही ढंग में इन दोनों एराज को एक साथ दिखाते हैं। और हमारे यहाँ तो स्टोरी है एल्सवेयर इन इंडिया, इसमें हम जो फोकस है वो ये है कि भविष्य में कल्चरल एमनीजिया जो हम बोल रहे हैं
जी,
वो पूरे सोसाइटी में छा गया है। इसका मतलब कि फ्यूचर में हो सकता है कि इंडियंस को याद ही ना रहे कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा हेरिटेज क्या है, क्या होता था पहले, और ये नहीं बोल रहा सिर्फ ट्रेडिशनल की पार्ट पूजा, ये सब जैसे म्यूजिक है या खाना है, इस तरह की हेरिटेज भी सब भूल गए फ्यूचर में। तो फ्यूचर में इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर हैं, जो मूर्ति का एक कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर है, और जयलक्ष्मी ईश्वर जो डांसर है उनका कैरेक्टर है
जी।
वो तीन लोग फ्यूचर में पूरे इंडिया में घूम रहे हैं ढूंढते हुए, जिसको फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें जो बची हुई है हेरिटेज की, उनको ढूंढ रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, और उनको इकट्ठा करके वहां के फ्यूचर के कम्युनिटीज में दिखा रहे हैं कि इंडिया पहले कैसे होता था, और उसका एक नया रूप जो फ्यूचर में, वो होपफुल फ्यूचर जो हम बोलते हैं हमारे शो में, होपफुल फ्यूचर्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आई थिंक ये जरूरी है सोचना कि पास्ट और फ्यूचर एक ही चीज है
जी।
और दोनों को साथ में ही लेके एक्सपीरियंस करना चाहिए।
बिल्कुल, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व भी कर रहे हैं और एक नयापन भी आ रहा है ताकि उसको हम और एक्सप्लोर कर सकें। अब जब एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो इसमें कुछ तो आप काम कर रहे हैं, कुछ AI का दखल भी है, तो उसके ऊपर ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो नया एक मीडियम क्रिएटिविटी में आया है, ये कितना क्रिएटिव है और इससे क्या कोई आगे कुछ खतरा है? कॉपीराइट का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कुछ कोई एथिक्स का टकराव, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी?
आई थिंक कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तब पुराने जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो पुराने तरीके होते हैं उसको अप्रोच करने का, वो बदल जाता है, जिसके वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब भी होते हैं और काफ़ी लोगों को लगता है कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि गलत हो सकता है, गलत तो कहीं पर भी कभी भी हो सकता है
जी।
बट AI ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट और थिंकर्स की तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप अपने काबू में एथिक्स और मॉरल्स को मायने रखते हुए उसको एक कोऑर्डिनेशन और अरेंजमेंट की मीडिया की तरह यूज कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि जो बहुत सारे चीज़ें काफ़ी टाइम लगता था, जैसे कि आप 7वीं मंजिल पे अगर आप पहले जाते थे तो पैदल चले जाते थे, बट अब आज लिफ्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम
चलना भूल गए हैं,
हम नहीं जानते चलना। तो ऐसा ही कुछ एनालॉजी है, काफ़ी तुच्छ सी एनालॉजी है, बट मैं मानता हूँ कि इसकी वजह से आपका काम जो काफ़ी घंटों में होता था वो कम घंटों में हुआ है, और आर्टिस्ट अभी भी ह्यूमन है, और कोऑर्डिनेशन और कंपाइलेशन, जैसे आपने हमारे चैट के दौरान कहा था कि फर्नीचर आप बाहर से कहीं भी उठा के ला सकते हैं खरीद के, बढ़िया से बढ़िया, बट घर पे किस रूम में जाना है वो आप डिसाइड करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि म्यूजिक के एस्पेक्ट में स्टिल आप ही लीडर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं इस सब चीज का, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है और कैसे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का सामान चुरा लें और ये करें। और अगर आप देखा जाए संगीत भी, मैं कोई नया संगीत नहीं इन्वेंट कर रहा हूँ, काफी सारा अपना शास्त्रीय संगीत इंडिया में हो या वेस्टर्न फिलोसफीज में हो, सारा कुछ बहुत ही सदियों पहले लिख दिया गया है और परफॉर्म भी कर दिया गया है। लोग अभी इसी चीज को अदल बदल के, तोड़ मोड़ के, अब एक नए सोसाइटल कंडीशंस में प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सेम म्यूजिक जो मेरे पेरेंट्स सुनते थे, मैं शायद वो सेम नहीं सुनता हूँ, थोड़ा अलग सुनता हूँ, वो भी सुनता हूँ बट थोड़ा अलग सुनता हूँ, अपने सदी का सुनता हूँ, क्योंकि मेरा पालन पोषण इस सेटिंग में हुआ है, तो मैं अपने सेटिंग्स का भी काफी सारा इंस्पिरेशन लेता हूं, अब्सॉर्ब भी करता हूं।
आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपने वो सीखा है
जी।
उनका क्या जिन्होंने सीखा नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं कि ये भी है, वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो कहीं मिस हो रहा है?
हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जरूर हो रहा है, बट मैं ये भी नेगेट नहीं करूंगा कि अगर कोई लोग सीखे बिना कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप आर्ट जो है एज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेशन में ही सारा मजा और रस है।
अनिता, इसमें विजुअल्स में फॉर एग्जांपल अगर आप विजुअल का इंडस्ट्री लें तो उसमें कॉपीराइट और एथिक्स की बात बहुत चल रही है। शुरुआत से 2-3 साल पहले जब से AI आया है, शुरुआत से इमेज मेकिंग आर्ट विजुअल आर्ट के माध्यम से में बहुत चर्चा हुई है और अभी भी हो रही है, एंड इसके कारण बिल्कुल सही है क्योंकि AI जो सिस्टम जो अभी बने हैं बहुत जल्दी जल्दी आ गए मार्केट में, बिना रेगुलेशन के आए हैं, इसलिए जो डेटा सेट्स जिसको बोलते हैं वो डेटा सेट्स आर्टिस्ट के दूसरे काम के ऊपर बिल्ट हैं, इसलिए जो भी AI में काम बनाता है आज के टाइम पे, ये सब जो काम बनता है किसी और का एक खिचड़ी बन के उस खिचड़ी से एक नई खिचड़ी निकली है, ऐसा यही है,
यही हो रहा है।
लेकिन इसमें जैसे मूर्ति बोल रहे थे, एक बहुत जरूरी सोचने की बात है कि सदियों से आर्ट जिसको बोलते हैं, विजुअल हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल एक्सप्रेशन वाली बात है, उसके बाद ये शेयरिंग वाली बात भी है। इसमें सारे लोग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, कोई भी आर्टिस्ट आप ले लीजिए, वो पिछले 2-3 हजार साल, 5,000-10,000 साल से जो आर्ट चल रहा है, केव पेंटिंग से लेके अभी तक, हम उनसे सीख कर ही हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उठ के नई नई चीजें, प्राइमरी कलर लाल क्या है, हरा, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, सब नई चीजों को पुरानी चीजों के ऊपर ही चढ़ के कर रहे हैं। इसलिए AI इसी चीज की एक एवोल्यूशन है। तो इवन दो एज ह्यूमन बींग्स हमें इससे थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम जो आज पहुंचे हैं वो AI टाइप की एक प्रोसेस जो हमने अपनी सोसाइटी में बनाई है आर्ट के अराउंड, म्यूजिक के अराउंड, वो कर करके ही हम यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्ट एक्चुअली फाइनली अगर देखें क्यों आर्ट पैदा हुआ है सोसाइटी में, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनको थोड़ा खुश करने के लिए, इससे ज्यादा आर्ट बेचने के लिए आर्ट कभी नहीं बना था। जो आर्ट जो इंडस्ट्री जो है वो अभी रिसेंट फिनोमेनन है। असली में आर्ट का पर्पज सिर्फ अपने आप को इस अर्थ में हम आ गए हैं, पृथ्वी पे आ गए हैं, उसको वो रिलेशनशिप को संभालने के लिए आर्ट बना है। और हो सकता है कि AI की वजह से जो इंडस्ट्री टूट रही है या टूटेगी, उससे हम शायद वापस उसी रियलाइजेशन पे आएंगे। और इसलिए AI का भी एक हिडन बेनिफिट ये है कि हो सकता है हमें आर्ट का असली पर्पज इंडस्ट्री पैसे वैसे निकाल के जो असली पर्पज है वो शायद रिवील फिर से हो सकता है।
तो जो नए लोग हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
मैं चाहूंगा कि एक खुले तरीके से इसकी तरफ देखें, अपने जो मूल सूत्र हैं जिसके वजह से आप वो उस आर्ट में हैं, उनका ना भूलें, उनके रियाज करें, उनको हरदम अपना बेसिक फाउंडेशन बना के रखिए। बट नई चीज़ों को अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। बट अपने कला के जो मूल सूत्र हैं जिसके वजह से आपके, मतलब जैसे आपका रियाज हुआ, ऐसी चीज़ों पे भी आप ध्यान दें, क्योंकि इसका असली जो रस है, किसी भी कला का रस है, जब तक आप अपने में ना प्रैक्टिस करें फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। आउटकम बेस्ड हो गया काफ़ी, दुनिया फास्ट हो गई, आप देखिए ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें 30-30 सेकंड में बहुत कुछ स्टोरीज भी बोल दिए जाते हैं। पहले की तरह अभी फॉर्मेट्स काफ़ी छोटे हो रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं, अडेप्ट होना है। ज़रूर मानता हूँ कि एथिक्स और इन चीज़ों के बारे में सोचना है, हर किसी को इन्वॉल्व करना है, इसके बारे में और बात करना है, हर किसी की मतलब ओपिनियन लेनी है, तभी जाके ये आगे बढ़ सकता है।
जड़ों को मजबूत रखना चाहिए, तभी पेड़ हरा भरा रहेगा ना।
जी जी,
याद दिलाते रहना है, और यही आप कर रहे हैं एल्सवेयर इन इंडिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, आपके प्रोजेक्ट के बारे में जान के। बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी, उदाहरण बनते रहें लोगों के लिए कि नए के साथ पुराने का तालमेल कैसे लगाना है।
धन्यवाद अविनाश सर मेरी तरफ से।
इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल, Facebook या Instagram पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, TV चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।